ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे शैवम.आर की श्रोताओं, अगला कार्यक्रम बच्चों की कहानी का समय है। इसमें आप तिरुविळयाडल पुराण की पांचवा भाग को सुनने वाले हैं। इस कार्यक्रम को पेश करते हैं श्रीमती शांता सुंदरराजन जी। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।
बच्चों, अब तक आप परंजोधि अडिगल के द्वारा रचित तिरुविळयाडल पुराणम में इंद्रदेव और उनका वाहन ऐरावत का गर्व भंग होना, मदुरई नगर का पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां सुनी। कुलशेखर पांडियन ने इस नगर का सुव्यवस्थित निर्माण किया था। ये भी सुना कि उनका वंशज मलयध्वज पांडियन की तपस्या से देवी पार्वती पुत्री के रूप में आविर्भाव हुई। मलयध्वज पांडियन की पत्नी कांचनमाला पिछले जन्म में कैसे विद्याधर की पुत्री विश्ववती थी और उसने कैसे देवी मीनाक्षी से यह वर प्राप्त कर लिया था कि देवी मीनाक्षी ही उसकी पुत्री बनकर अवतरण करेगी। कन्या का नाम तटातगई रखा गया था।
मलयध्वज के मरणोपरांत तटातगई पांड्य देश को अच्छी तरह राज करने लगी। अभी तक वह अपने विवाह के बारे में सोची ही नहीं थी, परंतु माता कांचनमाला मन ही मन इस पर विचार करने लगी। वह एक दिन तटातगई को अपने मन की बात कही। उसने यह भी याद दिलाया कि तटातगई एक अलौकिक स्त्री थी जिसका तीसरा भी स्तन था। तटातगई ने माता को सांत्वना दी और भगवान शिव पर भरोसा रखने को कहा। माता ने मंदिर की अश्लीली वाणी को याद करते हुए उसे दिग्विजय पर जाने को कहा। माता के आदेश के अनुसार तटातगई दिग्विजय पर निकल पड़ी।
ऋषि मुनियों और महामंत्री सुमति ने एक शुभ दिन चुनकर दिए। मृदंग भेरी जैसे ताल वाद्यों के तुमुलों के बीच एक सुसज्जित रथ पर सवार देवी तटातगई प्रस्थान हुई। रथ के आगे और पीछे सैकड़ों संख्या में रथ गज तुरग पदादि युद्ध वीर युद्ध ध्वनि के बीच चल पड़े। उनमें बहुत सारे वीरांगनाएं भी थी। उनके हाथों में तरह तरह के तलवार धनुष और बाण जैसे अस्त्र शस्त्र थे। सेना के बड़े समुद्र की तरह था यह। ऐसे ध्वनि और आक्रोश बनाया जिससे तीनों लोग कांप उठे। इंद्र और अन्य देव आकाश से सभी से जय जयकार करने लगे।
देव ने तो युद्ध के पहले ही सफेद झंडा दिखा दिया। उसने देवलोक की सारी अमूल्य वस्तुओं को देवी तटातगई के पांव के तले रख दिया। तटातगई उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगे। बीच में किसी भी देश का राजा इस विशाल सेना का सामना नहीं कर सका। सब के साथ राजाओं ने प्रतीकात्मक भाव से अपने मुकुट और किरीटों को उनके पादों में समर्पित कर दिए। चारों दिशाओं में कोई विरोध करने वाला वैरी ही नहीं था। तटातगई अपनी सेना को नेतृत्व करते हुए कैलाश पर्वत तक आ पहुंची।
हिमालय पर्वत को बहुत ही आनंद हुआ। उसे ऐसा लगा रहा था कि अपनी खोई हुई पुत्री फिर से मिल गई। बच्चों, आपको यह मालूम हुआ होगा ना कि देवी पार्वती स्वयं हिमवान की कन्या ही थी। वह कहानी भी अद्भुत है, किसी और समय हम उसे देखेंगे। तो हिमालय पर्वत ने आनंद से उस विशाल सेना के लिए रास्ता सरल कर दिया।
जब तटातगई की प्रशस्त सेना को नंदी भगवान ने देखा तो वे चौंक उठे। नंदी देव शिव भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने भूत गणों की सेवा को भेजा। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों सेनाओं में बहुत वीरों और वीरांगनाओं की क्षति हुई। नंदी देव शिव जी के पास गए और कहने लगे, भगवान, आप तो स्वयं परब्रह्म हैं और यह भी जानते हैं कि साक्षात देवी पार्वती ही तटातगई के रूप में आई है। अब यह लीला छोड़िए और देवी को अपना लीजिए। देवी के बिना आप अधूरे हैं।
शिव जी जो आशुतोषी हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए युद्ध के लिए तैयार हुए। अपने पिना की बाण हाथ में लिए नंदी देव पर सवार होकर देवी तटातगई के सामने प्रत्यक्ष हुए। तब सिंहिनी की तरह योद्धा वर्दी में खड़ी हुई उस वीरांगना को देखा। शिवजी पर देवी तटातगई की भी दृष्टि पड़ी। तत्क्षण उसका तीसरा स्तन तिरोहित हो गया। देवी तटातगई के मुखमंडल में लज्जा छा गई और वह अरुण वर्ण की ही हो गई। उस वर्ण में देवी की युद्ध प्रवृत्तियां तिरोधान हो गई। उसके दिव्य सौंदर्य में चार चांद बढ़ गई। सहज से उसकी दृष्टि भूमि की ओर झुक गई। महामंत्री सुमंत जो इस घटना के साक्षी थे, उन्हें वह पुरानी आकाशवाणी याद आई और वे फूले न समाये। उन्होंने देवी और महादेव दोनों का नमस्कार किया।
मंत्री जी ने देवी तटातगई से कहा, देवी आप तो साक्षात पार्वती देवी ही है। विद्याधर की पुत्री विश्ववसु की तपस्या के परिणाम स्वरूप कांचनमाला की कन्या के रूप में आपका अवतरण हुआ है। साक्षात महादेव आपको पाणि ग्रहण करके पांड्य देश में राज करने वाले हैं। आप भी मीनाक्षी नाम से प्रसिद्ध होंगी। देवी तटातगई भगवान महादेव को नतमस्तक प्रणाम कर मंत्री के पास आकर खड़ी होगी। अब तो वह वधू बन गई है ना?
भगवान महादेव प्रसन्न चित्त होकर कहे कि मैं सुंदरेश्वर के नाम और रूप में मधुरई महानगरी आकर देवी मीनाक्षी से विवाह करूंगा। इसके लिए सब तैयारियां हो जाए।
महामंत्री वधू की तरफ से कहने लगे, आपकी आज्ञा का पालन होगा और सुंदरेश्वर सुंदर पांडियन बनकर दक्षिण भारत का राज्यभार संभालेंगे। हमारी यह सुयोग भी है और यही हमारी प्रार्थना भी है।
बच्चों, इस तरह देवी तटातगय और महेश्वर के विवाह का सुनिश्चय हुआ।
दीदी एक बात पूछो।
हाँ पूछो।
आप बार बार दिव्य दंपति का उल्लेख कर रहे हैं, क्या देवताओं के विवाह और मनुष्य जाति के विवाह में अंतर है?
हाँ उषा, मनुष्य जाति का विवाह समाज में अनुशासन बनाने रखने के लिए उद्विकास यानी एवोल्यूशन किया हुआ एक संस्था है।
दीदी इसके बारे में बच्चों को और कुछ बताएंगे? उद्विकास क्या है?
बच्चों, उद्विकास को अंग्रेजी में एवोल्यूशन कहते हैं। मानव जन्म का क्रमागत उन्नति हुई है। आप तो जानते होंगे ना कि कीड़े मकोड़े से लेकर पशुओं तक जीव का विकास होकर अब मनुष्य जाति का तक आ पहुंचा है। इनमें से कुछ पशुएं अपने को बचाने के लिए झुंड में रहते हैं, लेकिन मनुष्य जाति का विशिष्ट लक्षण यही है कि वह एक सामाजिक प्राणी है। उसके और दो विशिष्ट लक्षण हैं कि वे सिक्स्थ बुद्धि यानी सिक्स्थ इंटेलिजेंस और उसका एक मन भी होता है। मनुष्य अच्छा या बुरा हो सकता है। बुरे मनुष्यों से समाज की गतिविधि पर बुरा असर हो सकता है, इसलिए बहुत सारे कानून कायदों की आवश्यकता होती है, नहीं तो समाज में गड़बड़ हो जाता है। विवाह भी ऐसे ही एक संस्था है जिनमें नर और नारी विधि पूर्वक घर बसाते हैं, बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए और एक अच्छे परिवार के लिए माता और पिता का होना अनिवार्य है।
अच्छा दीदी, देवी देवताओं की शादी क्यों की जाती है? अन्य धर्मों में तो ऐसा नहीं है ना? इसका कारण क्या है?
उषा, हमारे धर्म में काफी ऐसे तत्व हैं जो देवी देवताओं के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। इन्हें समझना बालकों के लिए कठिन है, फिर भी मैं साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी। दिव्य विवाह भी ऐसा ही एक तत्व का प्रतीक है। शिव और शक्ति का मिलन होने से ही पूरे विश्व में एक तरह का संतुलन बन सकता है। आप जानते ही होंगे ना कि बिजली के दोनों छोर यानी सकारात्मक और धनात्मक का मिलने से ही ऊर्जा बन सकता है और हमें रोशनी मिलती है। इसी तरह शिव और शक्ति, इन दोनों का मेल मिलाप होना अनिवार्य है। शक्ति नहीं है तो इस दुनिया के सारे संचालन स्थगित हो जाएगा। इसी भावना को एक उदाहरण द्वारा बताने के लिए ऐसे दिव्य विवाह रचाया जाता है।
हाँ दीदी, मैंने भी सुना है कि शिव जी जब अकेले हैं तो दक्षिणामूर्ति स्वरूप धारण कर समाधि में खो जाते हैं, पराशक्ति भी निश्चल हो जाती है। जब वे दोनों एक होते हैं तब की संसार में सृष्टि होने लगती है। इस भावना को एक उदाहरण द्वारा बताने के लिए ही ऐसे दिव्य विवाह रचाया गया है। भगवान शिव ने मंत्री सुमति को ध्यान दे दिए कि वे दुल्हा बनकर मदुरई आकर देवी तटादगई के साथ शादी रचाएंगे।
शादी का ऐलान सुनते ही कैलाश में हल्ला गुल्ला मच गया। नंदी देव तो सब भूत गणों के नेता बन गए। बारात में कौन कैसे जाएगा और किस तरह की वेशभूषा पहनेगा, इसका पूरा ब्यौरा बनाया गया। भगवान शिवजी जो साधारणतया अपने को सजने में कभी भी ध्यान नहीं देते, अब विशेषतः अलंकरण करने लगे। गज चर्मांबर के जगह पीतांबर पहने लगे। सांपों की आभूषणों की जगह नवरत्नों का हार को पहने। सिर पर गंगा जी वज्र मुकुट जैसे बनी, क्योंकि चंद्रमा की किरण जो उस पर पड़ रहा था। इस तरह शिवजी सचमुच सुंदरता का ईश्वर यानी सुंदरेश्वर बन गए। देवलोक से सब देवी देवताएं बारात में शामिल हो गए।
बच्चों, आप भी शादी देखने के लिए तैयार है ना? चलिए हम सब मदुरई जाएंगे। उधर लड़की वाले तो और भी उत्सुक होंगे ना? क्यों दीदी, मदुरई नगर में क्या क्या हो रहा था बताइए ना।
हाँ, मदुरई महानगर तो विवाह के लिए बड़े पैमाने पर तैयार होने लगा, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी तक प्रतीक्षा करनी होगी।